हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह के 11 बजे गाड़ी धृति के घर से कुछ दूरी पर रुकी। धृति ने अपना मंगलसूत्र खोलकर बैग में रख लिया और सिंदूर को टिश्यू पेपर से साफ कर लिया। शादी के बारे में बताना तो था, पर ऐसे सुहागन बनकर उनके सामने जाती तो उन्हें गहरा सदमा लगता और वो उन्हें कुछ समझा नहीं पाती। इसलिए उसने अभी के लिए शादी की इन निशानियों को मिटा लिया। गहरी सांस छोड़ते हुए धृति कार से बाहर निकली और अपने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए मन ही मन सोचने लगी कि परसों शाम से गायब है तो उनके हजारों सवाल होंगे। क्या जवाब देगी उनके सवालों का और कैसे बताएगी उन्हें अपनी शादी के बारे में? इन्हीं सब उलझनों में उलझी धृति अपने घर के बाहर पहुंच गई। उसने गेट नॉक किया और कुछ ही मिनटों बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने कोमल जी खड़ी थीं। उन्हें देखते ही धृति की आंखें भर आईं। परसों शाम से जो दर्द उसने खुद में दफन किया हुआ था, आज अपनी माँ को सामने देखकर वो दर्द आंसुओं बनकर उसकी आंखों से बरसने को आतुर हो गया। भावुक धृति अपनी माँ के गले लगने को आगे बढ़ी, पर कोमल जी ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया और गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। धृति उनकी बातें सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी। कोमल जी का व्यवहार हमेशा उसके प्रति रूखा ही रहा था, पर आज वो कुछ बदली बदली सी लग रही थीं। उनका रवैया पहले से ज्यादा बेरुखी भरा लग रहा था और आंखों में अलग ही गुस्सा और नफरत झलक रही थी। धृति अभी कुछ समझ ही नहीं सकी थी और हैरान परेशान सी कोमल जी को देख ही रही थी कि कोमल जी एक बार फिर गुस्से से उस पर भड़क उठीं। अब क्या लेने आई है तू यहाँ हमारे घर? पहले अपने बाप को खा गई, अब अपने यार के साथ मिलकर हमारी इज्जत को सरेआम निकाल कर दिया। अब क्या रह गया है जो तू अपना मनहूस चेहरा उठाकर फिर हमारी चौखट पर चली आई? कोमल जी की बात और उनके लगाए इल्ज़ाम सुनकर धृति की हैरानगी की तो कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखा और हैरानगी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? मैंने क्या किया है जो आप ऐसे कह रही हैं मुझे? तू नहीं जानती क्या किया है तूने, अपने उस आशिक के साथ मिलकर क्या गुल खिलाए हैं तूने। तुझे नहीं मालूम या यहाँ हमारे सामने आकर सती सावित्री और मासूम बनने का नाटक कर रही है? कोमल जी गुस्से से उस पर भड़क उठीं। धृति की आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसने उलझन भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझी नहीं मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? कौन से आशिक का जिक्र कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल जी ने पहले तो आंखें तरेर कर उसे घूरा, फिर गुस्से में उसकी बांस पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर घर में ले आईं, फिर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया जिससे धृति का बैलेंस बिगड़ गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। इतने में कोमल जी गुस्से से उसकर चीख उठीं, कुछ नहीं पता ना तुझे, कोई आशिक नहीं तेरा, हमारी पीठ पीछे किसी लड़के के साथ रंगरलियाँ नहीं मना रही तू, तो जवाब दे मुझे कि परसों से कहाँ थी तू, किसके साथ अय्याशी कर रही थी, कहाँ मुंह काला करती फिर रही थी, बोल कहाँ थी परसों से तू और किसके साथ थी? धृति जानती थी कि ये सवाल उठेगा जरूर, इसलिए उसने इसके लिए खुद को तैयार किया हुआ था। धृति ने उनका सवाल सुना तो गहरी सांस छोड़ी और शांत स्वर में गंभीरता से बोली, मम्मी मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब चटाक। धृति अपनी बात पूरी भी नहीं कर सकी थी कि एक उड़ता हुआ हाथ सीधे उसके गाल पर आकर लगा। चांटा इतना तेज था कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। धृति का सिर एक तरफ को लुढ़क गया और कान सुन पड़ गए। कुछ सेकंड बाद उसने गाल पर अपनी हथेली रखकर सिर घुमाकर डबडबाई आंखों से उन्हें देखा। कोमल जी गुस्से से लाल नफरत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए उस पर बरस पड़ी। तेरी जैसी बेशर्म लड़की मैंने अपनी आज तक की जिंदगी में दूसरी नहीं देखी। पहले हमारी नाक के नीचे काम के बहाने अपने आशिक के साथ कुलछर्रे उड़ाती रही, हमारी पीठ पीछे अपने उस अमीर आशिक से हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और दो दिन दो रातें उसके साथ बिताकर बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ चली आई, और अब कैसे अपनी बेहयाई दिखाकर हमें अपनी बातों में बहलाने की कोशिश कर रही है? पर मैं तेरा असली चेहरा देख चुकी हूँ, सब जान चुकी हूँ मैं कि मेरे पीठ पीछे इस घर के बाहर तू क्या क्या करती फिरती है। सृष्टि कहती थी तो मैं विश्वास नहीं करती थी, पर अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अपने उसी अमीरजादे के पैसों पर ऐश करती होगी तू, और अब इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए छुपकर उससे शादी भी कर ली। फिर यहाँ क्या लेने आई है तू? जा, जिससे शादी की है उसी के साथ रहे। तेरी जैसी बेशर्म बेहया बच्चलन मौका परस्त भगोड़ी लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हमारे घर में तुझ जैसी चरित्रहीन लड़की के लिए कोई जगह है। धृति स्तब्ध सी उन्हें देखती ही रह गई। वो समझ ही नहीं सकी कि ये सब क्या हो गया। कोमल जी को उसकी शादी के बारे में कब, कैसे और कहां से पता चला? उसने तो सोचा था कि उन्हें आराम से बैठकर सब समझा लेगी, पर यहां तो उसकी जानकारी से पहले ही उसकी शादी का बम फूट चुका था। अब उसे कोमल जी के इस व्यवहार की वजह समझ आ चुकी थी। पहले तो धृति शॉक्ड सी इन्हें देखती ही रह गई, फिर उन्हें अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी आप गलत समझ रही हैं मुझे, सब इतना सीधा नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। चटाक, धृति ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर कोमल जी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। उन्होंने हाथ दिखाकर धृति को खामोश कर दिया और गुस्से से फुफकारते हुए बोली, कुछ नहीं सुनना है मुझे, सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुकी हूँ मैं, इसलिए अब तेरी बनाई किसी झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करूंगी मैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, पर आंखों देखी सच्चाई को झुठलाने की बेवकूफी नहीं करूंगी मैं। सब अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि काश जन्म लेते ही मर गई होती तू, तो आज तेरी वजह से हमें ये दिन न देखना पड़ता। बाप को तो पहले ही खा गई थी, आज अपने इस कुकृत्य से हमारी सालों की बनाई इज्जत पर भी कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया। सबसे सामने हमारे घर परिवार और संस्कारों का तमाशा बना दिया। हमारा और अपने स्वर्गवासी बाप का सर दुनिया के सामने झुका दिया। जब अपने मन की कर ही ली थी, अपने यार से छुपकर शादी कर ली, उसके साथ ऐशो आराम से अपने दिन गुजार रही थी, तो अब क्यों आई वापस लौटकर यहाँ, ताकि हमारे जले पर नमक छिड़क सके। चली जा यहाँ से अभी इसी वक्त, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तो दोबारा कभी लौटकर यहाँ मत आना और अपना मनहूस चेहरा हमें कभी मत दिखाना। हम समझ लेंगे कि मर गई तू, अब से हमारी एक ही बेटी है, तुझसे कोई रिश्ता नहीं हमारा। जा, चली जा यहाँ से, चली जा अपने उस अमीर पति के पास जिससे छुप कर शादी की है तूने, क्योंकि हम तो तुझे सारी जिंदगी अपने सर पर बिठा कर रखने वाले थे ना, इसलिए अपने यार के बारे में तूने कभी हमें कुछ नहीं बताया और हमसे छुप कर घर से भाग कर उससे शादी कर ली। जा, चली जा अपने उस पति के पास और याद रखना कि अब तेरा सब वही है, इस घर से या हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं। जिसके लिए तूने ये घर छोड़ा अब उसी के साथ रहे, जो चाहे करे वो अमीरजादा, पर कभी लौटकर यहाँ मत आना। तेरा यहाँ कोई नहीं, कोई मायका नहीं तेरा, निकल जा हमारे घर और हमारी जिंदगी से।
कोमल जी के इल्जाम, कड़वी बातें धृति को अंदर तक तोड़ गईं। वो माँ माँ पुकार कर अपनी सच्चाई बयां करने की कोशिश करती रही, पर कोमल जी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी बाँह पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आईं और उसे चौखट से बाहर धक्का दे दिया। बेचारी धृति जमीन पर मुंह के बल जा गिरी। उसने सिर घुमाकर आंसुओं से भीगी निगाहों से पलटकर कोमल जी को देखा। उन आंखों में गुजारिश थी कि एक बार उसकी बात सुन ले। उसकी हालत अभी ऐसी थी कि किसी को भी उस पर तरस आ जाए, पर धृति की माँ होते हुए कोमल जी को उस पर रत्ती भर भी तरस या दया नहीं आई। उन्होंने उसकी हालत को और मौन विनती को नज़रअंदाज कर दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोली, जा, चली जा उसके पास जिसके साथ शादी करके दो दिन से साथ रह रही है, मर गई तू हमारे लिए, तो जैसी बेशरम, बेहया, मतलबी, मौका परस्त, चालबाज, भगोड़ी लड़की से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। जा, चली जा यहाँ से और दोबारा कभी हमें अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। कोमल जी ने धृति को अपना फैसला सुनाया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। कार का ड्राइवर, जो अर्नव के ऑर्डर के हिसाब से गेट के पास छिपकर वीडियो कॉल पर यहाँ जो हुआ सब अर्नव को दिखा रहा था, वो दोनों को बाहर आते देखकर जल्दी से वहाँ से चला गया। अंदर से आती आवाज़ें आसपास के घरों तक पहुँचीं और घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोमल जी की बातें सुनने के बाद सब आपस में धेती के बारे में बातें करने लगे। देखो तो कितनी बेशरम लड़की है, माँ से छुपकर अपने यार से शादी की और बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर वापस यहाँ चली आई। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है। कितनी बार इसे मैंने लड़कों के साथ देखा था और कोमल बहन को कहा भी था कि अपनी इस बेटी पर जरा लगाम कसकर रखे, वरना कहीं हाथ से निकल गई तो सारे समाज में थू थू हो जाएगी। पर उसने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और देखो कर दी ना इस लड़की ने परिवार की इज्जत खराब। बड़ा खराब जमाना आ गया है, आजकल तो बच्चे माँ बाप के नहीं होते। देखो बेचारी कोमल ने कितना संघर्ष करके दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया और देखो एक बेटी माँ को अकेला छोड़कर दुनिया की सैर कर रही है और दूसरी अकेली माँ को छोड़कर अपने आशिक के पास चली गई। अरे बड़ा हाथ मारा है इसने, अपने रूप सौंदर्य के जाल में किसी अमीर जादे को फंसाया है इसने। बचपन से कमियों में जिंदगी बीती है, पर अब तो ऐशो आराम से दिन गुजरेंगे। सही कहा बहन जी, अपने सुख से ज्यादा आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इसने भी अपना फायदा देखकर अपनी जिंदगी सवार ली, खुद से अपने लिए अमीर लड़का ढूंढ लिया, वरना इसकी माँ अपने जैसे ही किसी गरीब परिवार में इसे ब्याह देती। अब अपने साथ साथ अपने परिवार के भी दिन बदल देगी ये। स्वार्थी बच्चे के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता बहन जी। जिस लड़की ने अपनी बूढ़ी माँ की परवाह नहीं की और अपने यार से छुपकर शादी कर ली, वो आगे उस माँ का ध्यान रखेगी, इसकी क्या गारंटी है? ये बात भी ठीक है, फिर कोमल है भी स्वाभिमानी। जिस बेटी ने उसके और उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उससे वो कोई रिश्ता नहीं रखेगी और ना ही उसकी दी कोई चीज लेगी। जितनी मुँह उतनी बातें हो रही थी यहाँ। कुछ की आवाज दबी थी तो कुछ की बातें धृति के कानों में शीशे की कींचों से चुभने लगी थी। हर जुबान धृति को कटघरे में खड़ा कर रही थी। बिना उसका पक्ष जाने उसे कसूरवार ठहरा दिया गया था। बिना किसी गलती के उसके चरित्र पर कभी न मिटने वाला दाग लग चुका था। धृति खुद पर उठते सवालों और उंगलियों को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। शायद अब किसी को कुछ सफाई देना, अपना पक्ष उनके सामने रखना, अपनी बेगुनाही को साबित करना उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता था। और रखता भी क्यों, जब उसकी खुद की माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, बिना सच्चाई जाने उसे गलत ठहरा दिया, बिना किसी गुनाह के उसे सजा सुना दी, तो किसी और को क्या ही कहती वो। सबके लगाए इल्जामों को उसने खामोशी से स्वीकार कर लिया।